जय राधमाधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधमाधव कुंज विहारी जय जय राधमाधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजन रंजन यशोदानन्दन व्रजजन रंजन यमोन्नतीरा वनचारियमुन यमुना तीरा वनचारियमुन जय राधमाधव कुंज विहारी जय जय राधमाधव कुंज विहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा राधा गिरिधारे राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बालदेव जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय नितय गौर हरि बा हरि बोल हरि बोल नितय गौर जय जय प्रभुपा 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 प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् नश्च प्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिके आज अक्षय तृतीया है तो उसके विषय में चर्चा करेंगे उमज्ञानविरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामैहं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं सचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणलिता श्रीशाकान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुती देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आज अक्षय तृतीया है, वैसे हर रोज भागवतम होता है। मैंने सोचा कि आज अक्षय तृतीया के दिन पर अक्षय तृतीया का महिमा का वर्णन करेंगे। तृतीया आप सब जानते हैं कि वैशाख मास का तीसरा दिन है, इसलिए इसको तृतीया कहा जाता है। अक्षय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन में कोई भी कार्य करते हैं वो अक्षय हो जाता है। जय श्री राधा गिरिधर भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की। अक्षय हो जाता है, वो क्षय नहीं होता है। कोई भी आध्यात्मिक कार्य हो, कोई भी पुण्य कार्य हो, वो सब क्षिति के बिना क्षा या अक्षय आक्षा आ संस्कृत भाषा के जो शब्द है या अक्षर है उनमें से पहला है आ और आखिरी है क्षा, अक्षा या यानी हमेशा जब तक ये शब्द रहेंगे तब तक वो आपके, या जब तक ये अक्षर रहेंगे तब तक ये पुण्य कार्य या कोई भी आध्यात्मिक कार्य रह जाता है। इसलिए आज के दिन बहुत सारे लोग पुण्य कार्य करते हैं और भी अनेकों भौतिक कार्य करते हैं। तो अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या हुआ था, अनेकों जो इतिहास में घटनाएं उनके बारे में एक के बाद एक चर्चा करेंगे, लेकिन संक्षिप्त में पहले वर्णन करेंगे। अक्षय तृतीया का सबसे पहला महत्व है फर्स्ट सिग्निफिकेंस। आज परशुराम जी का प्राकट्य दिवस है, अपियरेंस डे ऑफ परशुराम। दूसरा महिमा ये है कि आज गंगा जी इस पृथ्वी के ऊपर अवतरण हुआ है, ये दूसरा अक्षय तृतीया का महत्व है। तीसरा है ये आज ही के दिन सुदामा ने कृष्ण को चावल दिया था। क्या चावल दिया था? चिप राइस, पोहा दिया, थोड़ा सा दिया, भगवान ने कितना उनको प्रदान कर दिया। ये आज ही के दिन हुआ, अक्षय तृतीया के दिन। चौथा कारण है भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को, पांडवों को आज ही के दिन अक्षय पात्र प्रदान किए थे, यज्ञ अक्षय पात्र। कुछ लोग कहते हैं कि आज ही के दिन सतयुग का प्रारंभ हुआ था, कुछ लोग कहते त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन चंदन यात्रा का शुरुआत होता है, उसके बारे में लिखा है। और आज अक्षय तृतीया है तो ये कुछ महत्व है, दे आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ अक्षय तृतीया। तो अभी पहला हम लोग परशुराम जी के बारे में चर्चा करेंगे। परशुराम जी का प्राकट्य आज के दिन हुआ। रेणुकासुत जमदग्नि सुत, परशुराम जी कौन है? शक्ति आवेश अवतार है, दुष्ट संहार शक्ति उसके आवेश अवतार है परशुराम जी। वैसे परशुराम जी के बारे में अनेकों अनेकों लीलाएं वर्णन कर सकते हैं, लेकिन आज अक्षय तृतीया के दिन ही इतने इतने महत्व कार्य क्यों हुए उसके पीछे थोड़ा ज्योतिष शास्त्र को जानना होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार चार तिथियां हैं पूरा साल में, जिस दिन कोई विशेषता को या विशेष समय नहीं होता है, हर समय शुभ होता है, कोई भी कार्य करो वो शुभ हो जाता है। वो चार तिथियां इस प्रकार है। सबसे पहला है चैत्र का पहला दिन, वो है जिसको गुड़ी पड़वा के रूप में मनाते हैं या दक्षिण भारत में उगादी के रूप में मनाते हैं, ये है। दूसरा है विजयदशमी, उस दिन भी ऐसा कोई मुहूर्त का निर्णय करने की जरूरत नहीं है, क्या किसी कुछ भी करना है, दुकान ओपन करना है, कुछ भी करना है, कोई बहुत ही आध्यात्मिक कार्य करना है तो जैसे किसी का विवाह है तो उसके लिए समय देखना पड़ता है, ये समय बराबर है, कौन सा समय बराबर है उसके नक्षत्र के अनुसार, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पहला चैत्र का पहला दिन यानी गुड़ी पड़वा या जी गुजादी, दूसरा है विजयदशमी, तीसरा है अक्षय तृतीया यानी वैशाख का तीसरा दिन तृतीया, और चौथा है कार्तिक का पहला दिन, फर्स्ट मंथ, फर्स्ट डे ऑफ कार्तिक। ये चार ऐसी तिथियां हैं एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, हमारे जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य और चंद्र उच्च में रहता है। जैसे सूर्य का उदय होता है और अस्त होता है, चंद्र का उदय होता है अस्त होता है, तो वैसे ही ये नौ ग्रहों का जो हर व्यक्ति कुंडली में कुछ उच्च स्थान में रहते हैं, कुछ नीच स्थान में रहते हैं, जो ज्योतिष थोड़ा बहुत जानते हैं उनके ये ज्ञान होगा, उसको लिखते हैं उच्च है, कितने डिग्री उच्च है ऐसा लिखते हैं कुंडली में। ये चार दिनों में खास करके आर्यवर्त जो है, ये जो ये आर्यवर्त का जो कुंडली है, ऐसा नहीं केवल व्यक्ति का कुंडली होता है, जगह का भी कुंडली होता है, देश का कुंडली होता है, तो ये आर्यवर्त देश का जो जगह है जो हम लोग निवास कर रहे हैं उस जगह का जो कुंडली में सूर्य और चंद्र ये चारों दिनों में उच्च स्थान में रहते हैं, तो इसलिए ये बड़ा पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली ये है। तो इसी के दिन परशुराम जी प्रकट हुए, क्योंकि उन्होंने प्रकाशित किया सूर्य का महिमा, प्रकाशित किया सूर्य मतलब तेज, तेज को प्रकाशित किया। वैसे ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए लेकिन क्षत्रिय का गुण था, इसके पीछे थोड़ा सा इतिहास है वो वर्णन नहीं करूंगा, क्योंकि उनके जो माता थी उनका कुछ अलग अलग प्रकार, ब्राह्मण और क्षत्रिय के दो पिंड थे, तो किसी माँ ने सोचा कि नहीं 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 मुझे तो वो पिंड चाहिए करके खा लिया उन्होंने, तो खाते उनको क्षत्रिय के सारे गुण आ गए, उसकी वजह से परशुराम जी को क्षत्रिय का गुण प्राप्त हुआ भले ही ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए। जमदग्नि महान ऋषि थे और उनका बहुत ज्ञान, वैराग्य, सहनशीलता, अनेकों सद ब्राह्मण के गुणों के संपन्न थे। उनकी पत्नी रेणुका भी ऐसे ही थी। ऐसा हुआ परशुराम जी जैसे जन्म हुए, उनका अनेकों अनेकों विद्याओं को सिखाया उनके पिताजी ने, परशुराम हर चीज सीखने में बहुत शक्तिशाली, बहुत अच्छे थे, उन्हें सारे अस्त्र शस्त्र उनके पिताजी ने सिखाया, सारे शास्त्र उन्हें सिखाया। लेकिन उस समय एक राजा था जिसका नाम था कार्तिकेय अर्जुन, ये महिष्मतिपुर उसके राजा थे। ये कार्तिकेय राज अर्जुन इतना शक्तिशाली था, उन्होंने क्या किया था, नर्मदा नदी है उसको उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से उनका बहाव को रोक दिया और उसका उल्टा प्रवाह करने लगा, बड़ा बाढ़ आ गया उधर, रावण का कैंप था उधर, और रावण जो है उनको गुस्सा आया, क्रोध में कार्तिकेय क्रोध किया, कार्तिकेय ने कहा रावण को, रावण को उनको बंदी बना के अपनी जेल में डाल दिया था, इतना शक्तिशाली कार्तिकेय अर्जुन। तो एक बार वो गए थे जंगल में विहरण करने के लिए, तो उधर उन्होंने इनका जमदग्नि का आश्रम देखा। जमदग्नि का आश्रम देख के जैसे पहुंचे तो राजा आए, तो जमदग्नि ने क्या किया, उनके पास एक कामधेनु गाय थी, उससे उत्पन्न अनेकों अनेकों सुंदर सुंदर व्यंजन को खिलाया, जो चाहिए सब प्रदान करने लगे। कार्तिकेय राज ने सोचा कि ये जमदग्नि को कहा कि ये जो गाय है ये एक ब्राह्मण के पास है, इसको शोभा नहीं देता, वो हमारे राज्य में होना चाहिए, राजा हूं मेरे पास, राजा जो है वो हर चीज का मालिक होता है। लेकिन उस समय भूल गया
कि ब्राह्मणों का संपत्ति के ऊपर राजा का अधिकार नहीं होता है। अगर कोई राजा ब्राह्मणों की संपत्ति को हड़पने का प्रयास करता है उसी समय उसको पतन होता है। ये आजकल भी देखा गया है, जिस जिस राजा ने जिस जिस पॉलिटिशियन ने मंदिर का संपत्ति को हड़पने का प्रयास किया उसका पतन हो गया, तुरंत पतन हो गया। आंध्रा में एक राजा था, राजा मतलब चीफ मिनिस्टर था, उसने बालाजी मंदिर का संपत्ति हड़पने का प्रयास किया। जैसे हड़पने का प्रयास किया ठीक 10 दिन के बाद उसका मृत्यु हो गया। उधर जाके संपत्ति हड़पने का बहुत सारा योजना बनाया और ने कहा कि ये क्या है, पुजारी ने कहा इसका भगवान की पालकी है, मतलब कि उसके ऊपर मैं बैठूंगा। पुजारी जी ने कहा कि ये भगवान की पालकी है, किसी के लिए नहीं यूज किया था। उन्होंने कहा मैं खुद भगवान हूं, मुझे बैठाओ। बाद में बहुत सारे लोगों ने उनको समझाया, ने कहा कि अभी टाइम नहीं है, बाद में आके बैठूंगा, ऐसा बोल के गया था। बाद में आए नहीं, मर गया। वही राष्ट्र का वही संपत्ति, तिरुपति का संपत्ति हड़पने के लिए और एक चीफ मिनिस्टर ने प्रयास किया कि मैं अभी बालाजी संपत्ति को मैं राज्य के संपत्ति के साथ जोड़ दूंगा और मैं अपना धर्म का प्रचार करूंगा। ऐसा विचार के साथ उन्होंने बहुत सारे लॉस पास किए थे, तैयार किए थे, अभी असेंबली में आने वाला था। तब बहुत हल्ला हो गया हर जगह। तो समय एक दिन वो गए थे उधर ये करने के लिए, सब लागू करने के लिए, लॉ लागू करने के लिए, लेकिन उधर पहुंच ही नहीं पाए। कहां गायब हो गया उनका हेलीकॉप्टर किसी को नहीं मालूम, उनका लाश भी नहीं मिला। प्रत्यक्ष उदाहरण है, प्रत्यक्ष न्यूज़पेपर में छपा हुआ उदाहरण है, और कुछ और कोई उदाहरण की जरूरत नहीं, ये पुराने इतिहास की जरूरत नहीं है। कार्तिक राज ने ऐसे भी सोचा, उसने क्या किया, जबरदस्ती कामधेनु को उन्होंने हड़प लिया। तो जब तक ब्राह्मण थे उन्होंने कहा किया क्या करें, जाओ, शांति से बैठे थे। जैसे परशुराम जी वापस आए उनको जैसे मालूम पड़ा कि तुरंत हो गए कार्तिक और अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए। उनके अनेकों पुत्र थे, अनेकों सेना थी, सेना को सबको मार दिया उन्होंने अपनी परशु से, अपनी बाण से मार के कार्तिक और अर्जुन को भी उन्होंने मार दिया, और गाय को लेके आए, कामधेनु को लेकर वापस पिताजी को दिए। उधर कार्तिक और अर्जुन के जो पुत्र है उनको बहुत क्रोध आया, मौका ढूंढ रहे थे। उस समय ये जमदग्नि परशुराम जी जैसे आए, गाय को लेके आए, उन्होंने कहा कि मैंने सबको मार दिया। तो जमदग्नि ने कहा कि ये ब्राह्मणों को ये शोभा नहीं देता, युद्ध करना, किसी को दंड देना, मारना ये क्षत्रिय का कार्य है, और ब्राह्मण का शोभा जो है उनका सहनशीलता और सबको माफ करना, ये ब्राह्मण का स्वभाव होता है। फॉरगिविंग एटीट्यूड इज द क्वालिटी ऑफ ए ब्राह्मण। हर व्यक्ति का अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार एक एक गुण की वजह से शोभा मिलता है। परशुराम जी को कहा कि वैसे भगवान स्वयं है, परशुराम जी स्वयं का अर्थ शक्तावेश अवतार है, उनको कोई पाप नहीं लगता। लेकिन जमदग्नि ने कहा हे पुत्र तुम जाओ, जाके तपस्या करो, तीर्थ यात्रा करो, क्योंकि तुमने इतना सारा पाप किया और उसका प्रायश्चित करना होगा तुमको। पिताजी का आज्ञा मानते हुए परशुराम चले गए, इवेंट जमदग्नि राम। वैसे कोई जरूरत नहीं है, भगवान से उनको क्या पाप लगता है। पूरा हर जगह भ्रमण करने के लिए गए, एक साल की अवधि थी। जब वे जैसे आने वाले थे उस समय उनको मालूम पड़ा कार्तिक और अर्जुन के पुत्रों को कि मेरे जो पिताजी हैं उनको मारा है परशुराम, अरे परशुराम के पिताजी अकेले हैं, चलो हम जाते हैं। और जैसे गए थे उधर अग्निहोत्र यज्ञ चल रहा था और विष्णु का ध्यान करते बैठे थे, उस समय क्या किया, ये कार्तिक अर्जुन के पुत्रों ने जाके जबरदस्ती को मार दिए, उनके पिताजी को मार दिए। वैसे बीच में और एक कथा आती है, जमदग्नि कितने बुद्धिमानी हैं, या जमदग्नि राम परशुराम, उनकी माता रेणुका जब गंगा नदी से जल लाने के लिए गए थी, उस समय उनका मन थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए उनका हरण हो गया था किसी के और पुरुष के प्रति, गंधर्व राजा के प्रति उनका मन लग गया था, और उनको उस यज्ञ में आने में थोड़ा देरी हो गई, और जमदग्नि को मालूम पड़ा कि इनके मन में प्रदूषण है। मालूम होते ही तुरंत उनके पिता पुत्रों को कहा कि इसको मारो, तुम्हारी माता को मारो। तो कोई सुना नहीं। जमदग्नि ने कहा परशुराम को, आखिरी पुत्र थे, उन्होंने कहा तुम मारो। परशुराम जी को मालूम था कि मेरे पिताजी साधारण व्यक्ति नहीं है। परशुराम जी अपने परशु के साथ अपने सारे भाइयों को, अपनी माँ को भी मार दिया, गर्दन का रख कर दिया। पिताजी ने कहा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्या वरदान चाहिए? उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी माँ और मेरे भाइयों को पुनर्जीवित कीजिए, और ये भी उनको स्मरण नहीं होना चाहिए कि मैंने उनको मारा। तो पिताजी अति प्रसन्न हो गए। ये भी एक बार एक कथा आती है जमदग्नि राम का। और जैसे ये कार्तिक राजन के पुत्र विष्णु का ध्यान करते हुए जमदग्नि को मार दिए, तो समय परशुराम को बहुत खराब लगा। उन्होंने सोचा अभी कुछ करना होगा। इतना ही नहीं, जमदग्नि के पुत्र कार्तिकवीर अर्जुन के पुत्रों को ही नहीं, सारे जितने भी क्षत्रिय है जो अधर्म को फैला रहे हैं, इंद्रदित्य में लगे हुए हैं, सबको मारूंगा। इस प्रकार परशुराम जी 21 बार पूरा पृथ्वी में भ्रमण किए, 18 बड़ा बड़ा युद्ध किए, 3 छोटे छोटे युद्ध किए, 3 स्मॉल वॉर्स, और सारे जितने भी ये क्षत्रियों का जो खून है, समंत पंच का उधर एकत्रित किए, समंत पंच का कुरुक्षेत्र के नजदीक में है, उधर एकत्रित करके ने बहुत सारे खून के कुंड बनाए और उधर तपस्या करने लगे। इसलिए जयदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, क्षत्रिय रुदिरमये जगदपगत पापम स्नपयसि पश्यति समित भवतापम केशव द्रीता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे। क्षत्रिय रुदिरमये, क्षत्रिय रुदिरमये, क्षत्रियों के जो शरीर से उत्पन्न हुआ जो खून है, रुदिर है, ये बड़ा सा नदी जैसा बन गया था। जगत अपगत पापम, और क्यों उन्होंने ऐसा क्यों किया, सबको क्यों मारा? क्योंकि सारा जगत में वो पाप कार्य कर रहे थे। और स्नपयसि पश्यति समित भवतापम, स्नपयसि पश्यति ने क्या किया, सारे क्षत्रियों का जो खून से वो उधर उनने ही टुक बात। इसका अर्थ ये है कि जमदग्नि यानी जमदग्नि राम परशुराम उन क्षत्रियों के सारे उनको मार के उनके पाप को खत्म किए। क्षत्रियों का जो पाप चल रहा था, पाप में कार्य हो रहा था, उनका एक ही इलाज था कि परशुराम जी के परशु से मृत्यु प्राप्त करके उनसे सारे पाप नष्ट हो। इसलिए खा गया है भवतापम, इस प्रकार उनके उनको मार के उनके भव सागर से उनको मुक्त करा दिए। इस प्रकार ये जयदेव गोस्वामी ये दशावतार स्तोत्र में उनका गुणगान करते हैं। तो परशुराम जी का अभी भी वो जीवित है, या वो क्यों नहीं चिरंजीवी है, महेंद्र पर्वत में वे परशुराम जी तपस्या कर रहे हैं। परशुराम जी जब सारे विश्व को उन्होंने जीत लिया था, उसके बाद सब ब्राह्मणों को बांट दिया, होटा अडवायुर और 4 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, उन सबको अलग अलग स्थान दे दिया। जो बीच वाला भाग है कश्यप मुनि को दे दिया, और सारे ब्राह्मण ने कहा सब कुछ तो आप दान दे दिया, आप कहाँ रहोगे? परशुराम जी ने कहा ठीक है, मैं अपने लिए अलग स्थान बनाऊंगा। वो दक्षिण की ओर गए और अपनी परशु से ऊपर की लोकों से कुछ भूमि को प्रकाशित किए। वो भूमि का अभी भी नाम है परशुराम क्षेत्र। नासिक का दक्षिणी भाग से लेके कन्याकुमारी तक, यानी भारत का दक्षिण भाग का जो पश्चिमी तट है, जिसको वेस्टर्न कोस्ट कहते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न घाट्स, मुंबई से लेके या नासिक से लेके गोवा या ये जो रत्नगिरी एरिया है, और उसके नीचे कर्नाटक है, दक्षिण कर्नाटक है, गोवा है और केरल है, ये सब परशुराम क्षेत्र माना जाता है। उडुपी जाएंगे, उडुपी के पास एक पहाड़ दुर्गा बैठा, तो परशुराम जी उधर तपस्या किए थे। अपनी धनुष बाण गदा इत्यादि से उन्होंने कुंड को देते, अभी भी वो तीर्थ स्थान है। और उन्हें हर जगह जहां जहां गए थे पूरा विश्व में विष्णु का मंदिरों का स्थापना किया। और परशुराम जी का आराध्य देव है शिवजी, शिवजी उनके गुरु है, सारे अस्त्र शस्त्र शिवजी ने प्रदान किया परशुराम जी को, इसलिए शिवजी का मंदिर की स्थापना किए थे। प्रभुपाद जी ने एक बार ऐसा कहा कि आई एम जस्ट री एस्टैब्लिशिंग द टेम्पल्स अराउंड द वर्ल्ड। प्रभुपाद ने कहा कि मैं विश्व में हर जगह जाके मंदिरों का निर्माण नहीं कर रहा हूं, मैं मंदिरों का पुनर्जीवित कर रहा हूं। इसका अर्थ क्या है? पहले मंदिर थे और उन्हीं मंदिरों को मैं वापस प्रकाशित कर रहा हूं। वो मंदिरों का स्थापना ओरिजिनली किसने किया था? परशुराम जी ने किया था। अभी भी आप जाएंगे अमेरिका के इतिहास में, उत्तरी अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका और कनाडा के इतिहास में कुछ जगह ऐसा लिखा गया है कि जब यूरोपियन लोग आए थे उधर, उस समय पहले से बड़े 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 स्ट्रक्चर्स थे जिनको चर्च के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अभी भी बड़े बड़े इमारतें हैं, इनको मालूम नहीं है कब बना क्या है। और उस चर्च के ऊपर देखेंगे एक क्रॉस होता है चर्च के ऊपर, लेकिन वो क्रॉस जो है चक्र के ऊपर है। वो क्रॉस को अनेकों लोगों ने बदली किया क्योंकि बारिश मौसम के प्रभाव की वजह से शिथिल हो जाता है, लेकिन वो चक्र किस लोहा से बना है अभी तक किसी को नहीं मालूम। वो चक्र जो है अभी तक उसका कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ा। वो कहां से आया, क्यों आया, वो चक्र किसी को नहीं मालूम क्या था। ये सब परशुराम जी ने स्थापना किया उन मंदिरों को। तो परशुराम प्रतिष्ठा विग्रह अनेकों अनेकों खास करके परशुराम क्षेत्र में प्राप्त होता है। आप हर 10 किलोमीटर जाएंगे कोई ना कोई मंदिर होगा जहां परशुराम प्रतिष्ठा रहेगा, इसको परशुराम प्रतिष्ठा कहा जाता है। परशुराम प्रतिष्ठा करके उधर उन्होंने आराधना किया था। तो परशुराम जी का ये विशेष महिमा है। आप सबको मालूम है त्रेता युग में जो भगवान रामचंद्र प्रकट हुए उस समय शिव जमन जब टूट गया तो परशुराम जी को बहुत क्रोध आया क्योंकि उनके आराध्य देव परशुराम जी। तो परशुराम जी रामचंद्र को पर बहुत क्रोधित हो गए। तो रामचंद्र ने कहा ठीक है युद्ध करेंगे। तो परशुराम जी ने कहा चलो सारंग, वो कहा कि मैं सारंग को बुलाता हूं क्योंकि विष्णु का धनुष है सारंग। और परशुराम जी सारंग को बुला रहे हैं और सारंग प्रकट नहीं हो रहा है। परशुराम जी जैसे आंख खोल के देखे भगवान रामचंद्र के हाथ में सारंग था। तब परशुराम जी प्रणाम किए और उस समय भगवान रामचंद्र ने परशुराम के अंदर जो शक्ति आवेश था सब अपना लिए और परशुराम जी ने रामचंद्र प्रणाम करके वो महेंद्र पर्वत जाके तपस्या करने लगे। ये परशुराम का लीला है क्योंकि आज परशुराम जी का प्राय परशुराम जी के बारे में इतना चर्चा नहीं करते, इसलिए मैंने सोचा कि चंदन यात्रा है वो लीला के बजाय परशुराम का लीला चर्चा किया जाए। विल डिस्कस अबाउट परशुराम क्योंकि आज उनका प्राकट्य दिवस है। और परशुराम जी के पिता तो अभी सप्तऋषि हैं, अगले कल्प में परशुराम जी सप्तऋषि बनेंगे। सप्तऋषि अभी वो तपस्या कर रहे हैं। प्रभुपाद जी हमेशा परशुराम जी का उदाहरण देते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कुल में जन्म लिया क्यों ना हो उनके गुणों के अनुसार जाना जाता है। परशुराम जी वैसे ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे लेकिन उनके कार्य क्षत्रिय जैसा था इसलिए उसको क्षत्रिय माना जाता है। दूसरी ओर विश्वामित्र क्षत्रिय परिवार में जन्म लिए थे लेकिन उनके कार्य ब्राह्मण जैसा था इसलिए ब्रह्मऋषि कहा गया है। इसलिए स्वभाव और कार्य के अनुसार हमारा व्यक्ति का जो कुल निर्णय होता है। अंततः देखा जाए उनके पिताजी ब्राह्मण थे इसलिए उन्होंने कहा परशुराम को दया करुणा दिखाना है ब्राह्मण का शोभा देता है। भले ही हमारा वो लेके गया वो गाय लेके गया क्या फर्क पड़ता है, उनको क्षमा कर दो। लेकिन क्षत्रिय होने के नाते क्षत्रिय का खून होने के नाते अंदर क्षत्रिय का स्वभाव होने के नाते परशुराम जी ने इन्हें किया। तो ये परशुराम जी का विशेष लीलाएं हैं। और परशुराम जी जो है वो शिवजी को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं इसलिए शिवजी का मंदिर को भी स्थापना किया। उडुपी क्षेत्र में शिवजी का मंदिर है जिसका नाम है चंद्रमौलीश्वर। ऐसा कहा जाता है परशुराम जी वो चंद्रमौलीश्वर के हृदय में निवास करते हैं, यानी किसके हृदय में, शिवजी के हृदय में निवास करते हैं। इसलिए उस क्षेत्र के वैष्णव सब परशुराम जी का आराधना करते हैं। कैसे आराधना करते हैं, शिवजी के हृदय में परशुराम जी का आराधना करते हैं, परशुराम भक्त है। इसलिए परशुराम जी भार्गव भृगु भृगुपति, यानी भृगु सारे ब्राह्मणों के मूल है, और उन ब्राह्मणों को रक्षा करने के लिए परशुराम जी प्रकट हुए, इसलिए कुछ ऐसे सेना बनी है परशुराम सेना। जहां जहां ब्राह्मणों की निंदा होती है, जहां जहां ब्राह्मणों का अत्याचार होता है, आक्षेप डालते हैं, उनको ठीक दंड देने के लिए परशुराम सेना है। ये उनका विशेष कार्य है। तो आज अक्षय तृतीया होने के नाते आज गंगा जी का आविर्भाव दिवस है। आविर्भाव दिवस का अर्थ है कि ये पृथ्वी में भगीरथ इसी दिन गंगा को प्रकट कराया, इसलिए हमको ये भी याचना करना, ध्यान रखना चाहिए। आज अक्षय तृतीया होने के नाते गंगा जी सारा जगत को पावन करने वाली है, आज ही के दिन प्रकट हुई, क्योंकि सूर्य उच्च है और चंद्र भी उच्च है। सूर्य और चंद्र वंश दोनों आज उच्च श्रेष्ठ है, इसकी वजह से गंगा सारा जगत को पवित्र करने वाली है, तो वो आज के दिन प्रकट हुआ। तो अक्षय तृतीया के दिन और भी बहुत सारे कारण हमने बताया था। युग का शुरुआत है, कुछ कहां लिखा हुआ है सत्ययुग का, कहीं लिखा हुआ है त्रेतायुग का, त्रेतायुग का शुरुआत है। युग का शुरुआत होने के नाते तो आज शुरुआत के दिन कोई ना कोई अच्छे कार्य करते ही हैं, तो इसलिए आज लोग त्रेतायुग का शुरुआत है, ये सत्ययुग का शुरुआत है, युग आदि है, वैसे ही उगादि को युगादि भी कहा जाता है, युग इस युग का आदि है, वो होने के नाते आज के दिन सब लोग बहुत अच्छे कार्य करते हैं। लेकिन बहुत सारे जितने भी दुष्ट लोग भी हैं वे दान धर्म करना शुरू करते हैं, लेकिन आजकल ये सब लीलाओं को भूल के केवल सोना खरीदने के लिए जाते हैं। लेकिन इस बार इतना सारा एडवर्टाइजमेंट नहीं है, हर साल एडवर्टाइजमेंट आता है, आप हमारे यहाँ सोना खरीदिए। आज आप अक्षय तृतीया है इसलिए बैंक जो है इन्वेस्ट ऑन गोल्ड, 6% सोना कम रेट में मिलेगा आज, ऐसा बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट होते हैं, लेकिन इस साल नहीं है क्योंकि सोना का भाव जो है, ज्यादा ही नहीं, कभी ऊंचा होता है कभी नीचे होता है, और बड़ा बड़ा स्ट्राइक भी हुआ था, इसलिए आज थोड़ा सब ठंडा है सोने का मार्केट। नहीं तो अक्षय तृतीया का दिन सब लोग जाके सोना खरीदने के लिए जाते, वो सोचते हैं कि आज के दिन सोना खरीदेंगे, सोना पहनेंगे, पूरा जीवन भर सोना हमारे साथ रहेगा। ठीक है, मूर्खता है, पता नहीं कहां से शुरू हुआ, ये कभी शुरू नहीं हुआ। वास्तविकता में आज के दिन ट्रेडिशनली किस प्रकार मनाया जाता है, लक्ष्मी के 9 रूप है, उनमें से एक रूप है वरलक्ष्मी। विष्णु को आह्वान करके, वरलक्ष्मी को आह्वान करके लक्ष्मी, विष्णु और लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण का उपासना किया जाता है। किसके लिए उपासना किया जाता है? आपकी आपका सेवा के लिए। हमारे यहां सुख संपत्ति का अर्थ है धान्य प्रचुर मात्रा में। दक्षिण भारत में खास करके वैष्णव परिवारों में चावल एक दूसरे को दान देते हैं, वो चावल के ऊपर वो हल्दी और कुमकुम मिक्स करके उसको अक्षता कहा जाता है। दक्षिण भारत की भाषा में पता नहीं इधर और नॉर्थ में क्या कहते हैं इसको, अक्षते हैं, अक्षत बोलते हैं ना, अब बोलते हैं नॉर्थ में बोलते हैं, वो हल्दी और कुमकुम मिक्स किया हुआ चावल को अक्षत बोलते हैं ना। हाँ, तो आज के दिन जो श्रेष्ठ ज्ञान में आयु में श्रेष्ठ होते हैं उनके पास ये अक्षता लेके जाते हैं एक छोटे से हॉल में, और उनके हाथ में देते हैं और प्रणाम करके बोलते आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरा मति जो है कृष्ण में हमेशा रहे। हमेशा अर्थ क्या है? अक्षय। मेरा मन में जो कभी भी क्षति ना हो, भगवान की स्मरण का कभी क्षति ना हो, इसको वास्तविकता में अक्षय कहा जाता है, इसको अक्षता कहा जाता है। ये अभी ट्रेडिशन है, आज के दिन ये होता है, कंपल्सरी टेस्ट भी डन। तो आज के दिन दान भी दिया जाता है, क्योंकि ये आदि युगादि है। ऐसा भले ही ऐसा लगता है भौतिक है, लेकिन भौतिक नहीं है। हर कार्य के वजह हर कोई ना कोई संस्कार है, हर कोई ना कोई कार्य के वजह कुछ ना कुछ संस्कार है, कुछ ना कुछ विशेषता है। और भी कहा था कि अक्षय तृतीया जो है आज के दिन सुदामा जी पहुंचे कहां? द्वारिका में। अक्षय तृतीया का दिन पहुंचे सुदामा, आप सबको लीला मालूम है। सुदामा ने कहा मैं तो कुछ लाने आया नहीं, कृष्ण ढूंढ रहे थे, सुदामा कुछ तो कुछ लाया होगा, तो उन्हें सोचा संकोच कर रहे थे, तो तुरंत कृष्ण ने क्या किया, अच्छा तुम मेरे लिए पोहा लाया है, ये सब रानियां इतना सारा खिलाते लेकिन ये पोहा के सामने कुछ भी नहीं है। कृष्ण जो है एक मुट्ठी पोहा खाए और बहुत आस्वादन कर रहे थे। दूसरा लिए, तीसरा लिए, जब चौथा लेने के लिए जा रहे, सत्यभामा ने कहा अभी बस हो गया, अभी हमारा खाली हो जाएगा खजाना। क्योंकि सत्यभामा को मालूम था उदय सुदामा के लिए बड़ा भवन बड़ा संपत्ति का निर्माण हो रहा है। तो आज ही के दिन ये लीला हुआ था, इट हैपेंड ऑन दिस डे। और भी लीला है कि चंदन यात्रा का लीला स्टार्टेड ऑन दिस डे। क्योंकि ये जो गर्मी का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होने के नाते, वैसे गर्मी का मौसम ठीक 21 दिन के लिए रहता है, क्योंकि आर्यवर्त में सूर्य जो है ठीक हमारे सर के ऊपर 21 दिन के लिए रहता है, बाकी समय एकदम ठीक हमारे सर के ऊपर नहीं रहता, कभी उधर कभी इधर रहता है, नॉर्थ में रहता है कभी साउथ में रहता है, इट इज नॉट एग्जैक्टली एट द सेंटर इन द मेरिडियन। तो इसके वजह से, गर्मी होने की वजह से, जगन्नाथ जी ने कहा था इंद्रद्युम्न को, मेरा अनेकों अनेकों सेवाएं है लेकिन एक सेवा कभी भूलना नहीं चाहिए, वो है गर्मी। गर्मी के मौसम में ये चंदन यात्रा की सेवा कभी भूलना नहीं चाहिए। वैसे तो भगवान जगन्नाथ जी ने कहा था कि मुझे हर रोज चंदन लगना चाहिए, लेकिन चंदन यात्रा के समय इतना चंदन लगना चाहिए खाली मेरा आंख ही दर्शन होगा, बाकी कुछ दर्शन नहीं होगा। भगवान जगन्नाथ जी का सेवा में एक सेवा जिसका नाम है चंदन लागी, वो 7 बार उसका सेवा होता है, अभी थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा लगाते लेकिन शाम के समय चंदन लगाते भगवान को। लेकिन खास करके चंदन यात्रा जब होता है उस समय तो पूछिए मत, बहुत सारा चंदन लगता है। और चंदन कहां से आता है, मलय पर्वत से आता है, अभी जो मलेशिया है उधर से चंदन आता था, लेकिन अंग्रेजों ने मलेशिया के ऊपर राज करके सारा चंदन के वृक्षों को काट पीट के सब उन्होंने सुहा कर लिया, वो सेंट बना के अपने ऊपर डाल दिया अपने शरीर के ऊपर, उधर क्या उगा रहे, रबर का ट्री उगा रहे, अरे उधर से चंदन का कोई मलय चंदन खाली शास्त्रों में है, अरे मलेशिया जाओगे तो रबर ट्री मिलेगा, चंदन ट्री नहीं मिलेगा, चंदन के वृक्ष नहीं मिलेंगे उधर। ये चंदन का विशेषता है, भगवान को यह चंदन लागे सेवा होता है। ऐसे हमें राधा गिरिधारी को भी चंदन लगाया गया है, जगन्नाथ जी को हम लगाया नहीं, क्योंकि जगन्नाथ जी का विग्रह जो है परिवर्तन होता है, क्यों परिवर्तन है, केवल चंदन लागे के सेवा की वजह से होता है, क्योंकि चंदन में थोड़ा पानी रहता है, वो पानी जो है अंदर वो अब्सॉर्ब हो जाता है, इसके वजह से थोड़ा सा उनका शरीर नरम हो जाता है, इससे नवकलेवर होता है जगन्नाथ जी का। जो चंदन लागे सेवा चंदन यात्रा का है, तो ये जो विशेषता हमने आज कहा अक्षय तृतीया के दिन। वैसे तो भक्ति का कार्य हमेशा अक्षय होता है, अक्षय मतलब भगवान भगवता में कहते हैं कि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। त्रायते महतो भयात्, महान भय से वो व्यक्ति मुक्त हो सकता है, क्योंकि भगवान के एक भक्ति के कार्य में कभी क्षय नहीं होता है, क्षति नहीं होता है, भौतिक कार्य हमेशा क्षति होता है। तो आज के दिन एक उपदेश देना चाहिए, जब भौतिक कार्य भी भगवान के संबंध में किया जाए उसमें क्षति नहीं होता है, केवल सोना धारण करने से सोना पहनने से ऐसा नहीं कि क्षति नहीं होता है, नहीं, भगवान के संबंधित अगर भौतिक कार्य भी करोगे आज, भगवान के संबंधित कार्य तो भौतिक नहीं होता है, लेकिन भले ही भौतिक है लेकिन भगवान के संबंध में करोगे तो वो कार्य में कोई क्षति नहीं होता है, ये उपदेश है। जैसे आपको ये बताया कि आज उड़पी में मंदिर में अक्षय पात्र का पूजा होता है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान ने अक्षय पात्र प्रदान किया था द्रौपदी को, जितना भी आप पकाओगे उसमें कभी क्षय नहीं होता, कभी कम नहीं होता है, और द्रौपदी जी ने इस्कॉन को भी ऐसे बनाया है, आज जितना खिलाओगे उतना बढ़ता रहता है, लेकिन नहीं, इट नेवर एंड, ये भी अक्षय पात्र है, इस्कॉन का प्रत्येक किचन अक्षय पात्र है, लेकिन नहीं तो कोई सोच सकता है ऐसा, इतना सारा होता है, इतना सारा पूरा विश्व में इतने सारे लोग प्रसाद लेते हैं और कोई पेमेंट नहीं, पता नहीं कहां से आता कहीं जाता है, कि नहीं, इस अक्षय पात्र, आज के दिन अक्षय पात्र का प्राकट्य हुआ, भगवान ने दिया था। वैसे देयर आर सो मेनी सिग्निफिकेंसेस लाइक दिस, सुदामा का जाना, त्रेतायुग का शुरुआत होना, चंदन यात्रा, ये सब अक्षय तृतीया का महत्व है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? और कोई भूल गया कृपासिंध प्रभु आपका लिस्ट में? हाँ गणेश जी, ये बात भूल गया था। गणेश जी आज के दिन महाभारत लिखना शुरू किए, व्यासदेव जी डिक्टेट कर रहे थे और वो लिख रहे थे। और कुछ भूल गया? हाँ जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ रथ का निर्माण आदि के दिन शुरू होता है। हाँ ये भी और एक सिग्निफिकेंस है, 7 या 8 है नहीं? चलो वो गिनते हैं वापस। पहले परशुराम का प्राकट्य, गंगा का आज के दिन अवतरण, त्रेतायु का शुरुआत, सुदामा कृष्ण के पास जाना, और द्रौपदी अक्षय पात्र ने प्रदान किया आज के दिन, और रथ का शुरुआत, रथ यात्रा का निर्माण का शुरुआत, रथ बनाना आज के दिन शुरुआत करते हैं, चंदन यात्रा 7, और महाभारत का आज के दिन लिखना शुरू, 8 हो गया। चलो 8 पॉइंट हो गए। आप आज शाम को अपने प्रोग्राम में बता सकते हो 8 पॉइंट सब लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं, यू कैन एक्सप्लेन ऑल द 8 पॉइंट्स। तो चंदन यात्रा, हम लोग तो चंदन यात्रा के बारे में जानते हैं हर साल, मैंने सोचा कि इस बार पूरा अक्षय तृतीय का विशेषता बताया जाए, ठीक है? तो 8 पॉइंट्स, 21 दिन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि शास्त्र में है, ऐसा नहीं कि खाली माधवेंद्रपुर ने किया था, वो शास्त्रोक्त बात है कि चंदन यात्रा से शुरू होकर 21 दिन तक ये हर वैष्णव संप्रदाय में होता है, हर जगह, वेर एवर यू गो इट हैपेंस। ऐसा नहीं कि केवल इस्कॉन में है, हाँ इट इज वृंदावन में, हर जगह, वेर इवन साउथ में भी, इट इज ए लॉ ड्यूरिंग दिस टाइम अक्षय तृतीया से शुरू होकर 21 दिन तक भगवान को गर्मी लगता है, इसलिए चंदन लगाना चाहिए। 7 साल में दक्षिण भारत में चंदन के साथ पंखा भी करते हैं, तिरुपति में नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी भगवान को ठंड लग रहा है क्योंकि ऊपर है ना। ये बात हुआ था एक भक्त था जिसका नाम है वरदा, कंचीपूर्ण, उनके साथ थोड़ा जमा नहीं था वरदाचार्य, वरदराज सरदा ने कहा तुम जाओ, मेरा ही विग्रह है वो तिरुपति में जाके सेवा करो। तो उन्होंने कहा कि उधर क्या सेवा करो, तो पंखा चलाओ। वरदराज जी का प्राकट्य हुआ था अग्नि से, इससे उनको हमेशा पंखा चाहिए क्योंकि गर्मी रहता है ना। लेकिन तिरुपति बालाजी ऐसे बहुत सारे उनका हवा बह रहा है, उधर जाके पंखा चलाने वाला तिरुपति बालाजी ऐसे तो मुझे ठंड लग रहा है, निकलो अभी तुम वापस जाओ, उधर जाके सेवा करो। तो उधर उनका इतना चंदन नहीं लगता, उनको कर्पूर लगता है तिरुपति बालाजी। तो ऐसे जितने विग्रह हैं उनको चंदन का सेवा जो है वो करना चाहिए। चंदन यात्रा 21 दिन का, वैसे माधवेंद्रपुरी का भी महिमा आज गाया जा सकता है, चंदन यात्रा का महिमा, कि माधवेंद्रपुरी स्वयं बहुत सारे ब्राह्मणों को उन्होंने एकत्रित करके इन सबको बताया था आप चंदन घिसो और क्या करो भगवान को लगाओ। किनको? खीर चोर गोपीनाथ ने कहा, खीर चोर गोपीनाथ को कहा कि आप गोपीनाथ का विग्रह को लगाओ तो गोपाल के रूप में गोवर्धन में मैं स्वीकार कर लूंगा। ऐसे परम सत्य एक ही है, भले अनेकों विग्रह के रूप में प्रकट है, आप इधर भगवान की सेवा अर्पण करो भगवान उधर से ग्रहण करते हैं, ये उसका विशेषता। परशुराम भगवान परशुराम की जय। हरे कृष्ण। अक्षय तृतीया।